अध्यात्म की वास्तविक संपदाएं गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। दुर्लभ है मूल्यवान वस्तुएं। देवियों भाइयों,
लकड़ी का एक बड़ा सा संदूक है। संदूक के भीतर लोहे की अटैची है और उस लोहे की अटैची के भीतर कीमती जेवर हैं जो सोने चांदी से बने हुए थे। कीमती चीजों को तीन तरह से संभालने की बात समझ गए न।
चोर उठाएगा तो संदूक को उठाएगा और फिर अटैची को निकालेगा।
जेवर का तो बाद में पता चलेगा, इसलिए समझदार आदमी बहुमूल्य चीजें एक के भीतर एक छिपाकर रखते हैं।
भगवान भी समझदार है,
उसने हर कीमती चीजों को छिपा छिपा करके रखा है। उसने बाहरी चीजों को, कम कीमत की चीजों को बाहर रखा है, उससे ज्यादा कीमत की चीजों को और भीतर रखा है, उससे भी ज्यादा कीमती चीजों को और भी भीतर रखा है। आपने देखा नहीं है कि जमीन में मिट्टी, कूड़ा, कंकड़, पत्थर बाहर पड़ा रहता है।
जमीन को जरा सा खोदिए तो नीचे पानी मिल जाएगा।
पानी कितना कीमती है, पत्थर से ज्यादा कीमती है।
पानी से आदमी जिंदा रहता है, पेड़ पौधे जिंदा रहते हैं।
पानी कितना कीमती है, मिट्टी इतनी कीमती नहीं है, पानी ज्यादा कीमती है इसलिए नीचे है।
मित्रों,
इसके बाद में फिर भगवान ने इससे कुछ और कीमती चीजों को कुछ और नीचे रखा है।
आप नीचे और गहराई में खोदते चले जाइए तो पेट्रोल पाइएगा, और नीचे खोदते जाइए तो लोहा पाइएगा, धातुएं पाइएगा, सोना चांदी पाइएगा।
यह सब चीजें गहरे में रहती हैं, ऊपर नहीं रहती। समुद्र के बाहर क्या रखा है? समुद्र के नजदीक बाहर वाले हिस्से में नमक फैला रहता है।
आप कभी समुद्र के किनारे जाना, वहां आपको खाली नमक मिलेगा, खारा पानी मिलेगा, खाली जमीन मिलेगी।
अगर आप और भीतर घुसने की कोशिश करेंगे तो आपको वहां कीमती चीजें मिलेंगी।
मोती नीचे गहराई में मिलते हैं, ऊपर नहीं मिलते।
ऊपर की सतह पर क्या मिलता है? खारा पानी होता है, समुद्री फेन वगैरह तैरते फिरते हैं और बहुत सी बेकार चीजें घूमती फिरती हैं। समुद्र में कीमती चीजें नीचे रहती हैं।
मित्रों,
मैं क्या कह रहा था? मैं यह कह रहा था कि इंसान की सत्ता में तीन लिफाफे हैं, उसके तीन कलेवर हैं।
आपने देखा नहीं कि बीमा करने का, रजिस्ट्री करने का लिफाफा 2.5 रुपये का आता है?
वह मोटा होता है और उसके भीतर नोट रख देते हैं। नहीं साहब,
नोट बाहर रखिए और लिफाफा भीतर रखिए। भाई साहब, तब मुश्किल पर जाएगी, मोहर लगेगी तो नोट खराब हो जाएगी और डाकखाने वाला पोस्टमैन चुरा ले जाएगा,
इसलिए नोट भीतर रखते हैं।
सब लोग जितनी होशियारी जानते हैं, भगवान उतनी होशियारी तो जानता ही है।
उसने क्या करके रखा है? उसने इंसान को बेशकीमती नियामतें दी हैं और एक के भीतर एक छिपा करके दी हैं।
मानवीय व्यक्तित्व के तीन तल।
हमारे भीतर बहुत सारी परतें हैं। एक परत वह है जिसको हम शरीर वाला लिफाफा कहते हैं, जिसे चमड़े का शरीर कहते हैं, जो श्रम करता रहता है और श्रम करने के बदले में साधन कमाता रहता है। वह श्रम करता है, पसीना बहाता है और वस्तुएं कमाता है।
मकान किसने बनाया? हमारी मशक्कत ने।
कारखाने कौन बनाता है?
हमारी मशक्कत बनाती है।
मशक्कत से क्या मतलब है?
शरीर से।
श्रम से खेती बाड़ी होती है, श्रम से मकान बनते हैं, श्रम से कारखाने चलते हैं। यह कौन करता है? यह आदमी का शरीर करता है। शरीर कीमती है, बेशक शरीर बहुत कीमती है।
मित्रों,
स्थूल शरीर के बाद हमारा एक और शरीर है जिसको हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं।
स्थूल शरीर की बात मैं बता चुका हूँ।
यह चमड़े का शरीर है, यह कीमती है। नहीं, कीमती नहीं है, कम कीमत का है। अगर आप इसे बेचना चाहें तब, किराए पर उठाना चाहें तब इसके बहुत कम पैसे मिलेंगे।
एक मजदूर को क्या मिल सकता है बताना? देहात में 5-7 रुपये मिलते हैं और शहरों में 20-30 रुपये मिलते होंगे। कारीगर को क्या मिलता होगा? इससे ज्यादा शायद ही मिलता हो।
शरीर की कीमत कम है।
ज्ञान का शरीर, विचारों का शरीर, सूक्ष्म शरीर।
इसके बाद में हमारा एक और कीमती शरीर है। कौन सा वाला? जिसको हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। सूक्ष्म शरीर से क्या मतलब है?
सूक्ष्म शरीर से मेरा मतलब है ज्ञान वाला शरीर, विचारों वाला शरीर।
यह बहुत कीमती है, इसकी बकत कीमत ज्यादा है और भगवान ने इसे खुले में रखा भी नहीं है। इंद्रियों को तो खुले में रख दिया है, हमारी आंखें बाहर रखी हुई हैं।
सारी इंद्रियां बाहर खुले मैदान में हैं।
इन्हें चाहे आप जब देख लीजिए, लेकिन दूसरी चीजें इसलिए बहुत हिफाजत से रखी हुई हैं कि जिनका कहीं किसी को पता न चलने पावे, नजर न लगने पावे।
मित्रों,
दूसरा वाला शरीर जिसको हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं, यह है क्या? यह शरीर आदमी का दिमाग है। यह बहुत बेहतरीन खोपड़ी के भीतर रखा हुआ है।
चमड़ी में से खून निकालिए, चमड़ी को उखाड़ने पर भी खून निकलता है।
आपने देखा भी है कि दिमाग को कैसे निकालते हैं। कितना मजबूत संदूक है जिसके अंदर आदमी का दिमाग रखा है। भगवान ने बहुत समझदारी से काम लिया है।
हमारा सूक्ष्म शरीर कितना कीमती है।
बहुत कीमती है।
क्यों?
क्योंकि दुनिया में जो कुछ भी बेहतरीन चीजें हैं वे सब दिमाग की पैदावार हैं।
साइंस किसकी पैदावार है?
दिमाग की पैदावार है।
साहित्य दिमाग की पैदावार है।
संगीत दिमाग की पैदावार है। दुनिया में जो कुछ भी आपको बेहतरीन दिखाई पड़ता है वह सब दिमाग की पैदावार है। अगर आदमी के दिमाग थप रहे होते और उसी तरह के से आदमी रहे होते जिस तरीके से वे आदिमकाल में रहते थे तो मुश्किल खड़ी हो जाती।
वे बेचारे क्या कर पाते?
कुछ नहीं कर सकते थे।
आदिमकाल में बड़े बड़े सरीसृप, हाथी और बड़े बड़े गज थे। बहुत तो 80-80 फीट तक ऊंचे थे। 120 फीट लंबे लंबे दांत थे। ऐसे थे वे। फिर वे कहाँ चले गए? भाई साहब, शरीर तो उनका बहुत मजबूत था। हाथी जैसे प्राणी बेडौल थे।
पर क्या कर सकते हैं?
पुराने जमाने के आदिमकाल के सारे प्राणी, सारे के सारे जानवर नेस्तनाबूद हो गए। लेकिन मित्रों,
अकल बहुत जबरदस्त है।
अकल न हो तो ट्रेन किससे चलती? अकल न हो तो वकील किससे वकालत करते?
प्रोफेसर किससे काम करते हैं? साइंटिस्ट किससे काम करते हैं? व्यापारी किससे काम करते हैं?
अकल से वे मालदार हो गए।
शरीर से मालदार हो गए क्या? नहीं, शरीर से मशक्कत कीजिए तो कोई 15 रुपये रोज के हिसाब से मजदूरी देगा। नहीं साहब, हमारी फैक्ट्री में तो बहुत आमदनी है। कितनी आमदनी होती है? हमारी फैक्ट्री में तो 2000 रुपये रोज की आमदनी होती है।
शरीर से ज्यादा कीमती है बुद्धि। भाई साहब,
यह हकीकी आमदनी है।
आप में अकल नहीं होती तो आपसे भी ज्यादा होशियार कारीगर काम करते, जिनको आप 10-20 रुपये रोज देते हैं, 30-40 रुपये रोज देते हैं।
मशक्कत आपसे ज्यादा करते हैं, योग्यता आपसे ज्यादा है, लेकिन आपके पास अकल है। दुनिया में अकल बहुत कीमती है।
अकल ने दुनिया में क्या क्या चमत्कार दिखा दिया।
शरीर ने साधन तो बना दिए, टूटी फूटी जमीन को साफ सुथरा तो कर दिया है, समतल तो बना दिया है। यह शरीर की ताकत है जिसको हम हॉर्स पावर करते हैं।
हॉर्स पावर यानी घोड़े की ताकत।
यहाँ शरीर का मुकाबला घोड़े से किया है। हॉर्स पावर वह भी है जिससे बिजली की मोटरें चलती हैं, और हॉर्स पावर यह भी है।
साहब,
आपका शरीर कितने हॉर्स पावर का है?
साहब,
हमारा शरीर 1.5 हॉर्स पावर का है। आपका 1.25 हॉर्स पावर का है और आपका 0.5 हॉर्स पावर का है। इस तरह शरीर हॉर्स पावर है।
मित्रों,
दूसरा वाला शरीर है सूक्ष्म शरीर, जिसमें हॉर्स पावर नहीं रख सकते। इसमें क्या है? विचार है, अक्ल है, जिसमें बहुत ताकत है। मैं समझता हूँ कि इन दोनों शरीरों के बारे में आप सब जानते हैं। इन दोनों की बकत आप सबको मालूम है। अगर न मालूम होती तो अपने शरीर को खूबसूरत बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, स्वस्थ बनाने के लिए आप अपनी अक्ल के मुताबिक कर सकते थे।
आपने सब कुछ किया भी।
खान पान के बारे में जो कुछ भी आप कर सकते थे अपनी हैसियत के मुताबिक आपने किया। आपने शरीर की सेहत बनाने के लिए, शरीर को प्रसन्न रखने के लिए, शरीर को खुशहाल रखने के लिए कपड़े पहने हैं, गद्दे लिहाफ का इंतजाम किया है। शरीर को ज्यादा खूबसूरत दिखाने के लिए जो कुछ भी आप कर सकते थे उसमें कोई कमी नहीं रखी। सेंट लगाने से लेकर फैशनेबल कपड़े पहनने तक जो कुछ भी आप कर सकते थे आपने किया, ताकि हर आदमी की निगाह में आपका शरीर अच्छा मालूम पड़े। शरीर की कीमत आपको मालूम है। मैं प्रसन्न हूँ यह जानकर कि आपको अपने शरीर की कीमत मालूम है। जानवरों को तो शरीर की कीमत ही नहीं मालूम है। उन्हें नहाना भी नहीं आता, कुल्ला करना भी नहीं आता, दांत भी नहीं मांजते, बालों में कंघी भी नहीं करते। रीछ है जो बालों में कंघी भी नहीं करता।
मित्रों, हमने एक दिन पूछा, रीछ जी
आप बालों में कंघी करेंगे क्या?
अरे गुरु जी,
हमको तो इतनी अकल ही नहीं है, हम क्या करेंगे। भेड़ों से पूछा, जैसे हमारे बच्चे बाल बना लेते हैं आप भी बना लेंगी क्या? भेड़ों ने कहा, नहीं हम नहीं बना पाएंगे, उनको अकल नहीं है, आप में अकल है। आपने शरीर की बाबत ध्यान रखा है। हमें प्रसन्नता है कि भगवान की दी हुई अमानत और भगवान की दी हुई नियामत के बारे में आपका ख्याल है। हम बहुत खुश हैं। इससे भी ज्यादा खुशी की बात यह है कि आपने अकल की कीमत समझी। आप स्वयं स्कूल में पढ़े हैं और दूसरों को पढ़ाया है। अगर आप स्वयं न पढ़े होते और अगर आपने पढ़ाया न होता तो आपकी कीमत 1 कौड़ी की, 1 छदाम की रह जाती।
अगर आपको शिक्षा प्राप्त नहीं होती, संस्कृति का ज्ञान न होता, समझदारी न होती, दूरदर्शिता, अक्लमंदी न होती, तो फिर आपकी क्या कीमत होती? फिर कुछ कीमत नहीं होती।
मुझे बहुत खुशी है कि हर व्यक्ति अपनी अक्ल को पैनी करने के लिए जो कुछ भी कर सकता है करता है। पढ़ने से लेकर अनुभव इकट्ठा करने तक, घूमने से लेकर सत्संग तक, बहुत सी बातों के आप जानकार हैं। आप स्वयं पढ़ते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं।
आध्यात्मिकता सबसे अंदरूनी परत। मित्रों,
शिक्षा के बारे में और समझदारी के बारे में आपका ख्याल अच्छा है, परंतु एक और बात मैं आपसे कह रहा था कि इसके भीतर जो चीज है उसकी ओर आपका ध्यान नहीं गया। आप दो चीजों तक सीमित रह गए। दो चीजों को विकसित करना तो जरूरी था, लेकिन इसके भीतर एक और परत है। वह कौन सी परत है? उसे अध्यात्म कहते हैं। आध्यात्मिकता की एक परत और बच गई है, जिसकी आपको जानकारी भी नहीं हो पाती और जिसके बारे में आप गौर भी नहीं कर पाते, जिसके लिए आप मेहनत भी नहीं करते। शरीर के लिए आपको मेहनत करनी चाहिए और अपनी अक्ल को पैना रखने के लिए, अक्ल को ठीक रखने के लिए आपको खर्च करना भी चाहिए।
दिमाग का बैलेंस सही रखने के लिए, दिमाग को खुशहाल रखने के लिए रोज मेहनत करनी चाहिए, पैसा खर्च करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। अगर आप अपने दिमाग के बैलेंस को गड़बड़ा देंगे तो काम कैसे चलेगा? बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी।
लेकिन मैं आपसे एक बात कह रहा था कि आपका एक शरीर और है, जो दोनों शरीरों के अतिरिक्त है।
मित्रों,
आपके भीतर एक और ऐसी तह है, एक ऐसी परत है जिसकी ओर आपको गौर करना चाहिए था, परंतु आप अभी तक गौर नहीं कर सके हैं। वह कौन सी वाली परत है? वह हमारी आध्यात्मिकता की परत है। यह तीसरी वाली परत है। मैंने पहले एक उदाहरण दिया था और कहा था कि लकड़ी की संदूक की कीमत कम होती है, वह 25-50 रुपये में आ जाती है। उसके भीतर जो असली वाली अटैची है वह ज्यादा दाम की आती है, और उसके भीतर जो चीजें रखी जाती हैं, मसलन कोई जेवर वगैरह होती है, जो ज्यादा कीमत के होते हैं। आपने ज्यादा कीमत वाली चीज पर कभी गौर नहीं किया। उसको आपने क्यों नहीं संभाला? उसको अगर संभालने की आपने कोशिश की होती तो मैं यकीन से कहता हूं कि आप लोगों में से हर एक की हैसियत आज की अपेक्षा बहुत ज्यादा शानदार होती। मजदूर की अपेक्षा पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति की हैसियत ज्यादा होती है।
मित्रों,
मजिस्ट्रेट की, जज की और दूसरे पढ़े लिखे लोगों की कीमत दुनिया में हमेशा रही है और रहेगी। आध्यात्मिक क्षेत्र, जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अगर आपकी अकल गई होती और समझ रही होती और आपने उसकी कीमत समझी होती और उसको बढ़ाने के लिए आपने कोशिश की होती, तो आप यकीन रखें कि आज हमारी और आपकी जो हैसियत है, आज जो स्थिति है, आज हमारे जीवन का जो स्वरूप है, उसकी अपेक्षा कहीं बेहतरीन स्वरूप रहा होता।
निखारें और परिपुष्ट करें अपना आध्यात्मिक स्वरूप। कैसे? आध्यात्मिकता की परत, जिसको हमारे बुजुर्ग जानते थे, वे अपनी सारी की सारी अकल और समझदारी इस बात में खर्च करते थे कि आदमी की रूहानी हिस्सा आध्यात्मिक परत किसी तरीके से मजबूत होती चली जाए, निखरती चली जाए और परिपुष्ट होती चली जाए।
उसका परिणाम क्या हुआ था?
उसका परिणाम आपको नहीं मालूम, परिणाम मालूम होना चाहिए। यहाँ के आदमी मालदार थे।
कौन कहता है कि मालदार थे? नहीं साहब,
बहुत मालदार थे। अभी तो आप मालदार हैं, किंतु पहले जमाने में कौन मालदार था? मित्रों, अभी आपके पास रेलगाड़ियां हैं, लेकिन बाप दादों के पास बैलगाड़ियां थी।
बैलगाड़ियों से चलकर हरिद्वार से हम आपके पास आए,
इसमें एक महीना लगना चाहिए था। गधे पर बैठकर आना चाहिए था अथवा बैलगाड़ी पर बैठकर आना चाहिए। धीरे धीरे चलना चाहिए था। और यहां आने में कितना टाइम लगना चाहिए था?
अब हम सवेरे चलते हैं और शाम को यहां आ जाते हैं, दोपहर तक आ जाते हैं। यह क्या हुआ? यह हमारी मालदारी है।
पहले शिक्षा कहाँ थी?
किताब वालों से पूछिए, वे बताएंगे।
पहले किताब वाले कहाँ थे?
कहीं कोई किताब वाला रहा होगा।
पहले जमाने में सारे के सारे लोग बिना पढ़े थे।
हम मालदार हैं।
हाँ, बिल्कुल मालदार हैं।
अब हमारे पास बहुत साधन है।
आज से 10 वर्ष पहले अगर हम आपके पास आते तो मुश्किल से 25 आदमी हमारे नजदीक बैठने वाले होते, जो हमारा भाषण सुन सकते थे।
आज तो हमारे पास माइक लगे हुए हैं। आप चाहें तो 1-2 लाख आदमियों को और 25 लाख आदमियों को हम एक आदमी की छोटी सी जीभ की नोक से भाषण सुना सकते हैं। किससे सुना सकते हैं? आप समझते नहीं हैं कि हम कितने मालदार आदमी हैं। हमारे पास पैसा नहीं है। हम बैंक से उधार ले आते हैं और बड़ी बड़ी फैक्ट्री खड़ी कर देते हैं।
पहले हम कहाँ मालदार थे, बताइए जरा।
पहले के लोगों की अपेक्षा अब हमें संपन्न कहा जाता है।
मित्रों,
अब हम बहुत संपन्न आदमी हैं, बाकी की दृष्टि से भी और साधनों की दृष्टि से भी, लेकिन हमारे पूर्वज इन दोनों चीजों की दृष्टि से शायद कम थे। पढ़े लिखे भी कम थे और मेरा ऐसा ख्याल है कि उनके पास साधन भी नहीं थे।
पहले रेलगाड़ियां कहाँ थी? नदियों पर जो बड़े बड़े पुल बने हैं वे कहाँ थे? वे बेचारे कभी कभी निकलते थे। वर्षा खत्म हो जाती थी तो नाव पर चलना शुरू करते थे।
वर्षा के दिनों में रास्ता बंद हो जाता था।
चातुर्मास आरंभ हो गया, देवता सो गए। नहीं साहब, देवताओं को जगाइए।
अरे भाई, देवता सो गए हैं, कैसे उठाएंगे? बरसात में 4 महीना देवता सोते रहते थे। कोई चलता ही नहीं था, कोई जाता नहीं था।
नदियाँ इतनी उफनती थी कि आदमी एक तरीके से कैद हो जाते थे। बुजुर्गों की हालत साधनों की दृष्टि से एवं अकल की दृष्टि से भी कम थी, लेकिन एक परत को उन्होंने इतना ज्यादा विकसित कर लिया था कि आदमी इतने ज्यादा खुशहाल थे कि यहाँ की खुशहाली और वैभव को देख करके दुनिया वालों ने उनका नाम जगतगुरु रखा था। चक्रवर्ती शासक नाम रखा था और देवमानव नाम रखा था।
इस जमीन पर रहने वाले आदमियों को देवता कहते थे। कौन है इंसान और कौन है देवता?
मित्रों, यहाँ देवता रहते थे।
नहीं साहब,
इंसान रहते थे।
आपके कहने से इंसान रहते होंगे, लेकिन हमारे हिसाब से देवता रहते थे। इंसान से आप क्या मतलब लगाते हैं? जिसके आंख, कान, नाक, दांत आदि होते हैं, आप उसे इंसान कहते हैं, लेकिन मैं कुछ और कहता हूँ। जिसका चिंतन, जिसके सोचने का तरीका हवाए होता है और जो ऊपर बैठकर विचार करता है, उसे इंसान कहते हैं। आप तो नीचे बैठकर विचार करते हैं, आप जमीन पर बैठकर विचार करते हैं, गड्ढे में बैठकर विचार करते हैं। इस तरह आप नरक में बैठकर के विचार करते हैं और किसी जमाने में पुराने आदमी के सोचने के तरीके, दृष्टिकोण, जीवनयापन करने के क्रम और सारी की सारी स्कीमें हवाई जहाज में बैठने वालों के तरीके से होती थी। देवता कहाँ रहते हैं? स्वर्ग में रहते हैं।
स्वर्ग कैसा होता है?
हवाई जहाज जैसा होता है।
साहब, स्वर्ग और हवाई जहाज में तो फर्क होता है। फर्क तो होता होगा, मैं यह नहीं कहता कि हवाई जहाज को ही स्वर्ग कहते हैं, पर यह एक उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ।
हवाई जहाज में बैठ करके आदमी नीचे की चीजों को नाचीज सा समझता है। ऊपर से नीचे की चीजें छोटी दिखाई पड़ती है।
बड़े बड़े तालाब जरा सा दिखाई देते हैं। बड़ी बड़ी चलने वाली रेलगाड़ियाँ जरा सी दिखाई पड़ती है।
हर चीज छोटी मालूम पड़ती है।
मित्रों,
आपको जिंदगी में जो चीजें बड़ी दिखाई पड़ती है, पहाड़ जैसी दिखाई पड़ती है, पर्वत जैसी दिखाई पड़ती है, भूत जैसी दिखाई पड़ती है, वे पुराने लोगों को छोटी दिखाई पड़ती थी। और जो आपको दिखाई नहीं पड़ती, जिसको आप समझते नहीं हैं, जिस बात पर आपका ख्याल नहीं जाता है, जिनको आप गौर भी नहीं कर सकते।
पुराने जमाने के बुजुर्गों की आंखों में बायोस्कोप लगे हुए थे।
वे छोटी छोटी चीजों को भी देख सकते थे, जिन्हें आप नहीं देख पाते हैं। जहरीले कीड़े आपको दिखाई नहीं पड़ते और आपके ऊपर वे हावी हो जाते हैं, क्योंकि आपकी आंखों में बायोस्कोप नहीं है। पुराने आदमियों के सामने विशेषताएं थी। काम करने का सलीका था, इसलिए उन्होंने बहुत काम किए। खुशहाली के लिए उन्होंने बहुत काम किए।
साधन नहीं थे, सामान नहीं था, फिर भी सामान के बिना तब खुशहाली थी।
आप समझते नहीं हैं कि सामान के बिना भी क्या खुशहाली हो सकती है।
किसी जमाने में कोलंबस हिंदुस्तान को तलाश करने के लिए आया था। यहाँ की खुशहाली को देखकर उसने हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कह दिया था। सारे संसार भर में सोने की चिड़िया एक ही है और उसका नाम है हिंदुस्तान। कोलंबस भटक गया और वहां जा पहुंचा अमेरिका में, लेकिन वह सोने की चिड़िया को तलाश करने के लिए निकला था।
इंसान की सबसे बड़ी दौलत।
मित्रों,
यहां आदमी के पास प्रसन्नता है, खुशहाली है, सेहत, मस्ती और आपस का भाईचारा है।
यह तीन बड़ी दौलत थी कि यहाँ का हर आदमी चैन की जिंदगी काटता था, खुशहाली से दिन काटता था और इतनी ज्यादा मौज, इतनी ज्यादा खुशहाली थी कि उसे सारी दुनिया में, सारे जगत में बिखेरता फिरता था। कहाँ कहाँ बिखेरा?
सारी दुनिया के कोने कोने में बिखेरा। इस संबंध में आप इतिहास के पन्ने पढ़ सकते हैं और हमारी कई किताबें पढ़ सकते हैं, जिसमें यह बात बताई गई है कि जब से इतिहास चालू हुआ है, जब से इतिहास का जिक्र है। इतिहास से पहले की बात तो मैं नहीं करता, पर जब से इतिहास लिखा जाने लगा है, तब से हिंदुस्तान के लोगों ने सारी दुनिया में किस तरीके से सेहत फैलाई, किस तरीके से उद्योग फैलाए, किस तरीके से शिक्षा फैलाई, किस तरीके से क्या क्या फैलाया,
अपने पास जो मालदारी थी उसको दुनिया में बिखेरते फिरे। हमारे बुजुर्ग बहुत मालदार थे। कैसे मालदार थे? आध्यात्मिक दृष्टि से मालदार होने की वजह से दुनिया में भारत भूमि, ग्रेटर इंडिया, बृहत्तर भारत के नाम से विख्यात हुआ, जिसमें 33 करोड़ इंसान रहते थे। सारी दुनिया के जितने द्वीप हैं, वे हिंदुस्तान में रहने वाले 33 करोड़ इंसानों को एक ही शब्द से पुकारते थे, देवमानव।
हिंदुस्तान में कौन रहते हैं? देवमानव रहते हैं, देवता रहते हैं। वे देवताओं का दर्शन करने आते थे और उनको जगतगुरु कहते थे। वे कहते थे कि आप हमारे बड़े हैं, आप हमारे बुजुर्ग हैं, आपने ही हमको दिया था।
आपके पास कौन सी दौलत थी? एक ही रूहानी दौलत थी जिसको आप भूल गए। उसकी ओर गौर करना चाहिए, उसकी ओर ध्यान देना चाहिए।
क्यों साहब, इससे क्या मिल सकता है?
हमने सुना है कि अध्यात्म से भगवान मिल सकता है।
अरे साहब, भगवान के मिलने में हमें कोई खास बात नहीं दिखाई पड़ती है।
इससे तो ज्यादा अच्छा है कि कोई फिल्मी एक्टर मिल जाए, भगवान को हम क्या करेंगे।
ठीक है, आपकी बात भी सही है कि आप स्वर्ग की बात तो सोचते हैं।
आज का आदमी सोचता है कि स्वर्ग मालूम नहीं कितना बड़ा होगा,
खाने के लिए कुछ मिलता होगा या नहीं, वहाँ जाने काफी मिलती होगी कि नहीं, ऑमलेट मिलती होगी कि नहीं। अगर ये चीजें नहीं मिलती होंगी तो बताइए हम क्या करेंगे। बिया पीने को ना मिली तो हम क्या करेंगे स्वर्ग में। स्वर्ग के बारे में यह बातें असत्य हो सकती हैं, पर आप में से हर आदमी यह सोचता है कि हमको स्वर्ग में नहीं जाना पड़े तो न सही, लेकिन किसी तरह से कश्मीर में गुलमर्ग में सैर करने का मौका मिल जाए और वहाँ शिकारा किराए पर लेकर 15 दिन घूमे,
क्या यह स्वर्ग से कम है?
आज आदमी इसी तरीके से विचार करता है।
आध्यात्मिकता की सच्ची कीमत। मित्रों,
मैं उस आध्यात्मिकता की बात तो गहराई से नहीं बताना चाहता जिसकी बाबत आपकी जानकारी नहीं है।
स्वर्ग कैसा होता है आपको मालूम है?
नहीं मालूम है, इसलिए मैं आपसे क्या कहूँ। मुक्ति किसे कहते हैं आप बता सकते हैं, आप तो मुक्ति की कीमत ही नहीं समझते।
अगर आपने इसकी कीमत समझी होती, अगर आपने कुछ मेहनत मशक्कत की होती, त्याग भी किया होता, कुछ पैसा भी खर्च किया होता, कुछ पसीना भी बहाया होता।
पर आपको तो पसीना भी बहाना नहीं आता।
बार बार जब एक माला लेकर बैठते हैं तब मन नहीं लगता और टाइम नहीं मिलता, फुर्सत नहीं मिलती।
आप मेहनत करने के लिए कहाँ कीमत चुका पाते हैं? सैर के लिए कीमत चुकाते हैं और दूसरी चीजों के लिए कीमत चुकाते हैं। झूठ मूठ में थोड़ा खेल खिलौना बनाते हैं और उसमें भी आपका मन नहीं लगता, फिर मैं कैसे कह सकता हूँ कि आप मुक्ति की बाबत जानते हैं? इस बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है।
स्वर्ग के बाबत आपको कतई जानकारी नहीं है।
और शांति की बाबत? नहीं, आपके केवल शांति शब्द सुना है। सिद्धियों की बाबत आपको जानकारी है? नहीं, आप तो सिद्धियों को बाजीगरी समझते हैं और बाजीगरों को सिद्ध पुरुष समझते हैं।
बाजीगरी नहीं है सिद्धियाँ। मित्रों,
बाजीगर क्या करते हैं? वे बालों में से बालू निकाल सकते हैं और पेशाब के दिए जला सकते हैं और मुंह में से बंदर निकाल सकते हैं और हवा में ऊपर हाथ तैरा करके आपको इलायची निकाल कर दे सकते हैं, कान में से उल्लू निकाल सकते हैं। सिद्धियाँ कैसी होती हैं आपको मालूम नहीं है, आपको कोई जानकारी नहीं है, सिद्धियों से आपका कोई वास्ता नहीं है। आप तो तमाशे को सिद्धियाँ कहते हैं, चमत्कारों को सिद्धि कहते हैं, खिलौनों को सिद्धि कहते हैं,
आप तो बाजीगरी को सिद्धि कहते हैं।
मैं कैसे मानूं कि आपके पास सिद्धि है? आप क्या कहना चाहते हैं? मैं यह कहना चाहता हूं कि आध्यात्मिकता के वे अर्थ जो अभी आपको समझ में नहीं आए उसकी बाबत तो मैं जिक्र नहीं करता, पर आध्यात्मिकता का वह अर्थ आपको समझाना चाहता हूं जिसको मैं इसका भौतिक पक्ष कहता हूं। भौतिक पक्ष में आपकी जानकारी है, वास्तव में आप जो डील करते हैं भौतिक जीवन में ही डील करते हैं।
इसलिए मैं आपको आध्यात्मिकता का वह सार बताऊंगा जो आदमी के भौतिक जीवन में कुछ फायदेमंद हो सकता है, आदमी को आनुदानिक हो सकता है, आदमी को खुशहाल बना सकता है।
मैं आपको वही हिस्सा बताऊंगा और उस हिस्से पर कोई जिक्र नहीं करूंगा।
मुक्ति सिद्धि की कोई बात नहीं करूंगा। नहीं गुरुजी, मुक्ति की बात बताइए। मित्रों, मुक्ति की बाबत बताने से पहले मुझे मुक्ति के शब्दों का अर्थ समझाना पड़ेगा और वह उससे बिल्कुल गलत उल्टा होगा जो आपने अब तक सुन करके रखा है। अगर मैं स्वर्ग के बारे में बताऊं तो स्वर्ग के पहले मुझे उसकी व्याख्या करनी पड़ेगी, परिभाषा करनी पड़ेगी जो आपकी अब तक की जानकारी के बिल्कुल खिलाफ है।
अगर मैं शांति की बात कहूं तब भी मुझे फिलअप करनी पड़ेगी, और अगर सिद्धियों की बात करूं तब
मुझे आज की बनिस्बत सिद्धियों की सही व्याख्या करनी पड़ेगी। आज तो आप सिद्धियों का अर्थ बाजीगरी लगाते हैं। बाजीगरी माने तमाशा दिखाए।
बाजीगर क्या दिखाता है? ऐसे अचंभे की चीज दिखाता है जो बच्चों ने पहले नहीं देखी है,
उसका नाम है बाजीगरी।
आपका मन बाजीगरी चाहता है, आप क्या चाहते हैं? बाजीगरी चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इस चक्र में से चमक पैदा कर दें। कैसे? जिस तरह से ब्याह शादियों के दिनों में रात के समय बत्तियां जलती हैं, बार बार जलती हैं, बुझती हैं और रंग बदलती रहती है, ऐसे ही आप हमारे दिमाग की खोपड़ी में जला दीजिए तो हमें चमत्कार दिख जाएगा। फिर आप कहेंगे कि हाँ साहब,
हमको चमत्कार दिखा,
उल्लू कहीं का।
मित्रों,
यह कोई चमत्कार है क्या? नहीं है। अरे साहब,
कोई तमाशा दिखाए, कोई अजूबा दिखाए। जब आप अजूबा दिखा देंगे तब हम चमत्कार मानेंगे। साहब, हमारे कान में घंटी बजा दीजिए, नादयोग सिखा दीजिए।
नादयोग से आपका क्या मतलब है? कान में घंटी बजा दीजिए, कोई शंख बजा दीजिए।
कोई बच्चे जैसी आवाज आए, बंदर या चूहे जैसी आवाज आए, फिर तरह तरह की आवाज आए।
खेल तमाशे का नाम नहीं है आध्यात्मिकता।
भाई साहब, इस काम के लिए आप ग्रामोफोन का रिकॉर्ड लगा लीजिए, रेडियो से सुना कीजिए।
उसमें तरह तरह की आवाजें आएंगी। इन बेकार की बातों से आपको क्या फायदा होगा?
मुझे तब बहुत नाखुशी होती है जब आप चमत्कारों की बात कहते हैं और कहते हैं कि हमको गणेश जी दिखाए, हमको हनुमान जी दिखाए, हमको लक्ष्मण जी दिखाए, हमको राम जी दिखाए, हमको बंदर दिखाए, हमको उल्लू दिखाए।
जब आप इन सबको दिखाने की बात कहते हैं तो मैं कहता हूँ कि आपको आध्यात्मिकता के बारे में कतई जानकारी नहीं है। आप सिद्धियों के बारे में जो इस तरह का अर्थ लगाते हैं कि हमको अजूबा दिखाए।
अजूबा तो भाई साहब
बाजीगर दिखाते हैं। कोई बाजीगर इस चक्कर में आपकी ऐसी उल्टी हजामत बना देगा कि आप फिर कौवे पालते रह जाएंगे। कोई बाजीगर आपकी अक्ल को खराब कर देगा और आपको उल्लू बना देगा।
मित्रों,
अध्यात्म की सिद्धियां कोई तमाशा नहीं है।
गुरु गोविंद सिंह क्या तमाशा दिखाते थे? सड़क पर मजमा लगाते थे,
कान में से बंदर निकालते थे। बेकार की बातें मत कहिए।
वे सिद्ध पुरुष थे कि नहीं थे? हाँ साहब, वे अपने जमाने के सिद्ध पुरुष थे।
नहीं साहब,
तमाशा दिखाए, क्या तमाशा दिखाएं? गांधी जी को तमाशा दिखाना चाहिए था, क्या तमाशा दिखाना चाहिए था?
टट्टी के रास्ते में से सांप निकालना चाहिए था और फिर वह सिर पर सवार हो जाता। क्या कहते हैं ऐसे, कुंडलिनी कहते हैं।
गांधी जी को कुंडलिनी दिखानी थी। चुप बेअकल आदमी, कुंडलिनी दिखानी चाहिए थी। मित्रों,
क्या करना चाहिए? बेअकली हमारे ऊपर इस कदर हावी हो गई है जिसमें समझदार भी शामिल हैं और बिना समझ भी शामिल है। इस मामले में दोनों वर्ग एक जैसे हैं, जो तमाशा माने सिद्धि मानते हैं, जबकि तमाशे का सिद्धि से कोई मतलब नहीं है।
भौतिकवादियों के लिए आध्यात्मिकता की व्याख्या।
इसलिए पुरानी बातें तो मैं नहीं कहता, पर अब मैं आपकी भाषा में बोलना शुरू करूंगा।
मेरे ख्याल से तो आप हिंदी जानते ही हैं, तो मुझे हिंदी में बोलना शुरू करना चाहिए। गुरुजी,
अंग्रेजी में मत बोलिए, हम तो अंग्रेजी पढ़े भी नहीं हैं। ठीक है, अंग्रेजी में बोलना बेकार है, तो हम आपसे मराठी में बोलेंगे।
नहीं गुरुजी, हमको तो पंजाबी आती है। हाँ गुरुजी,
पंजाबी बोल सकते हैं तो ठीक है, पर मराठी तो मत बोलिए, क्योंकि हम उसे नहीं जानते, समझते हैं। हाँ बेटे, मुझे वह भाषा बोलनी चाहिए जो आप समझ सकें। क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि मुझे आध्यात्मिकता का वह अर्थ करना चाहिए जो आपके काम का है, जिससे कि आप मोहब्बत करते हैं, जिसे आप मुनासिब समझते हैं। आप क्या मुनासिब समझते हैं? एक बात मुनासिब समझते हैं कि हमारा बाहरी वाला जीवन किसी तरीके से खुश हो जाए। आपकी आस यहीं तक सीमित है, इसलिए मैं आपको भौतिकवाद के दायरे में लेता हूँ।
पुराने जमाने के आदमी रहे होते तो आपको विशुद्ध रूप से भौतिकवादी कहते।
क्या कहते कि यह जो सब तबका है वह भौतिकवादियों का तबका है?
आध्यात्मिकता का तो कोई मायने मतलब भी ये नहीं समझते। मित्रों, आध्यात्मिकता का क्या अर्थ होना चाहिए?
इसे कोई समझता भी नहीं है।
आदमी को अपना व्यक्तित्व कैसे विकसित करना चाहिए, यह किसी को मालूम ही नहीं है।
इसलिए पुराने आदमी कहते हैं कि इन लोगों से आध्यात्मिकता का जिक्र करना बेकार है। नहीं साहब, हम रात्रि में देवी का जागरण करते हैं। आप रात्रि में देवी का जागरण करते हैं तो हम क्या करें?
आप आध्यात्मिकता की बात मत कहिए, आप तो देवी की पूजा वूजा करते रहिए, लेकिन अगर आप आध्यात्मिकता का जिक्र करेंगे तो मैं नाखुश हो जाऊंगा। दृष्टिकोण का परिवर्तन है आध्यात्मिकता।
आध्यात्मिकता से क्या मतलब है?
आध्यात्मिकता जीवन जीने की शैली है, सोचने का तरीका है, दृष्टिकोण है।
आपने तो इसे काम करने का एक ढंग बना लिया है। आपके लिए तो आध्यात्मिकता टेक्निक है, मेरे लिए यह टेक्निक नहीं है। मेरे लिए यह फिलॉसफी है जो आदमी के जीवन में उसके खाने से लेकर सोचने तक के हर काम में इस तरह से गूंथ जाती है जिस तरीके से दूध में घी गूंथ जाता है। यही अध्यात्म है।
आपको अध्यात्म समझाना बेकार है।
आपको छोटा ओ पढ़ना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के आप वहां तक पहुंचेंगे।
इसलिए आध्यात्मिकता का जिक्र मैं बंद कर देता हूँ। मित्रों,
मैं क्या कह रहा था? आध्यात्मिकता की बात कह रहा था, पर उसका तो रूहानी पहलू है, उसको मैं नहीं कहता।
आपको उसका मैं भौतिक पहलू बताना चाहता हूँ, जिसको कि आप आसानी से समझ सकें।
जो आपकी भाषा है, जो आपके सोचने का तरीका है, जिसको आप प्यार करते हैं, जो आप चाहते हैं और जिसको मैं भौतिकवाद कहता हूँ।
इसलिए मैं अध्यात्मवाद की भौतिकवादी व्याख्या करना शुरू करता हूँ।
क्या शुरू करना चाहते हैं? पहले मैं यह बताना चाहता हूँ कि क्या अध्यात्म भौतिक जीवन में किसी तरह से लाभदायक बन सकता है।
क्या इससे हमारा कुछ लाभ होगा?
लाभ से क्या मतलब है? लाभ से मतलब है पैसा और दूसरा मतलब है हमारी ताकत।
तीसरा है हमारी शोहरत। पैसा एक, ताकत दो और शोहरत सम्मान तीन। ये तीन चीजें हमको मिल जाए तो आप संतुष्ट हो जाएंगे। हाँ साहब।
तब तो हम संतुष्ट हो जाएंगे और मान लेंगे कि हमारे जीवन में आध्यात्मिकता के चमत्कार आ गए,
गायत्री माता की सिद्धि आ गई और उनका आशीर्वाद आ गया।
इसे आप मान लेंगे ना?
हाँ साहब मान लेंगे। मित्रों,
चलिए पुराने जमाने के लोगों के कुछ थोड़े से उदाहरण मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, जिससे आपके भीतर का यह वहम खत्म हो जाए कि क्या अध्यात्म सांसारिक जीवन को सुखी बनाने का मादा रखता है।
आपका यह भ्रम मैं दूर करना चाहता हूँ।
आज आपका वहम यह है कि ऐसी कोई बात नहीं है। आमतौर से जब आप यह कहते हैं कि हमारा मन भजन में नहीं लगता, तो मैं यह समझता हूँ कि आपके भीतर वाले अचेतन मत का यह विश्वास है कि यह बातें बेकार है, वह याद है। देखें, ट्राई करें, कुछ करें, 15 दिन देखें, यदि जब करने से कुछ फायदा होगा तो देखा जाएगा, नहीं होगा तो हटा देंगे। आमतौर से हर आदमी अचेतन से अवचेतन की ओर जाता है और जब देखता है कि इसमें दम नहीं है, यह ऐसे ही खिलवाड़ है, बात को ऐसे ही बड़ा चढ़ाकर कह दिया गया है। मैं इस वहम को मिटाना चाहता हूँ ताकि आप उसकी कीमत समझ सकें, वक्त समझ सकें और आप यह विश्वास कर सकें कि आध्यात्मिकता वास्तव में कुछ कीमती चीज़ है और वह सदी के शेयर से भी ज़्यादा कीमती चीज़ है। वह दुनिया की समस्त दौलत से भी कीमती चीज़ है और दिमागी अक्ल से भी ज़्यादा कीमती चीज़ है।
मित्रों,
इन कीमती चीज़ों को अगर आप समझ पाएंगे तो मेरा विश्वास है कि आप इस मार्ग पर चलने की कोशिश भी करेंगे। जब आपको उसकी कीमत ही नहीं मालूम है तो आप कोशिश क्या करेंगे?
अब मैं आपको आध्यात्मिकता की कीमत समझाता हूँ। प्राचीन काल में आध्यात्मिकता के रास्ते पर थोड़े से आदमी गए थे।
दुनिया में सांसारिक जीवन में जो आप चाहते हैं वे सब चीजें उनके पास थी। उन चीजों से वे पूरी तरह से भरे पूरे थे।
जैसे चलिए मैं पुराने आदमियों के उदाहरण दूंगा, फिर मैं बीच के आदमियों का उदाहरण दूंगा, आध्यात्मिक सिद्धियों के जीवंत उदाहरण। चलिए पहले पुराने उदाहरण बताता हूँ। पहले मैं आपके सामने हनुमान जी को पेश करना चाहता हूँ। हनुमान जी की गवाही नंबर एक।
मान लीजिए कि आप मजिस्ट्रेट हैं, आप गवाहों की इंक्वायरी करते जाइए,
उनके बयान नोट करते जाइए। कैसे? जैसे आपकी मर्जी हो।
मुझे गवाह तो पेश करने दीजिए, आध्यात्मिकता की वकालत तो करने दीजिए, ताकि आप मजिस्ट्रेट साहिबान इसके बारे में किसी नतीजे पर पहुंच सकें और यह फैसला कर सकें कि अध्यात्म आपकी जिंदगी में जरूरी है कि नहीं।
मित्रों,
क्या हुआ?
मैंने हनुमान जी को बुलाया और यह पूछा कि हनुमान जी, आप यह बताइए कि आपकी आध्यात्मिकता के बिना पहले जो जिंदगी थी, क्या वह ऐसी ही ताकतवर थी या कम ताकतवर थी?
अरे साहब,
आपको मालूम नहीं है कि हमारे बॉस सुग्रीव को जब उसके भाई ने मारपीट कर सब कुछ छीन लिया,
उसके राजपाट को छीन लिया, बीबी बच्चों को छीन लिया और मारकर भगा दिया, तब
हमने देखा कि बालिका तो हम कुछ बिगाड़ नहीं सकते, इसलिए हम सुग्रीव के साथ चले आए।
सुग्रीव हमारा पुराना दोस्त भी है, साथी भी है, अतः हम उसी के साथ चले आए और ऋषिमुख पर्वत पर हम नौकरी करने लगे और बॉडीगार्ड की तरीके से, खाना पकाने वाले के तरीके से, चपरासी के तरीके से जिंदगी काटने लगे। आपकी पुरानी जिंदगी यही है?
हाँ साहब, यही है। आप तो बड़े ताकतवर मालूम पड़ते थे।
अरे साहब, ताकतवर कहाँ, हम तो अव्वल दर्जे के डरपोक हैं। कैसे डरपोक? जब देखा कि कंधे पर धनुषबाण रखे हुए दो राजकुमार आ रहे हैं तो सुग्रीव को शक हुआ कि वे मारने के लिए आए हैं और बाली ने हमारा पता लगाने के लिए किन्हीं जासूसों को भेजा है। उसने कहा मेरे ऊपर मुसीबत आ सकती है।
भाई साहब,
आप नौकर हैं, आप जाइए और जरा पता लगाकर आइए।
मित्रों, बस हनुमान जी गए, उन्होंने सोचा कि आफत हमारे ऊपर भी आ गई। तब
बस, वह नौकरी देता है और नौकरी के लिए आफत आवे तो उसके ऊपर आवे, हमें तो इससे कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने अक्ल से काम लिया। अरे भाई,
मुसीबत से तो हमको भी बचना चाहिए। मरेगा तो सुग्रीव मरेगा, मारेगा तो बाली मारेगा, फायदा तो सुग्रीव का होगा, हमको तो केवल खाने को मिलता है।
अपनी जान बचाने के लिए हनुमान जी ने किसका वेश बनाया था आपको मालूम है?
आपको मालूम होना चाहिए, उन्होंने ब्राह्मण की शक्ल बना ली थी।
ब्राह्मण की क्यों बनाए? इसलिए बनाए कि पुराने जमाने के राजपूत ब्राह्मणों से मारपीट नहीं करते थे,
उनके सामने हाथ जोड़ते थे, मारते नहीं थे।
जान बचाने के लिए हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप बना लिया,
तिलक लगा लिया, 111 नंबर का मोटा वाला जनेऊ पहन लिया, जहां तक संभव हुआ अपने को पंडित जी बना लिया।
हनुमान जी ने मेकअप तो बना लिया पर एटिकेट नहीं आया। पुराने जमाने में पंडितों का एटिकेट होता था, लेकिन आज न तो कोई पंडित है और न उनका कोई एटिकेट है।
पुराने जमाने में जब कोई नमस्कार करता था तो पंडित हाथ उठाकर आशीर्वाद देकर नमस्कार करते थे, हाथ जोड़कर नमस्कार नहीं करते थे।
हनुमान जी ने क्या किया?
हाथ जोड़कर नमस्कार किया। किनको?
राजपूत को।
ये भी कोई ब्राह्मण है जिसे एटिकेट का पता ही नहीं है।
कैसे? विप्रोरूप धरी कपिता गयो, माथ नाई पूछत अस भयो। यदि हनुमान जी ने भगवान के लिए नमस्कार किया तो ढोंग किस लिए किया?
ब्राह्मण क्यों बन गए?
जब भगवान को जानते थे कि वे भगवान हैं, तो फिर ढोंग काहे को बनाया?
चले जाते और कहते कि हम हनुमान हैं, हम आपके भक्त हैं और आपके पैर छूने आए हैं।
फिर दुनिया भर का बहुरूपी अपन क्यों बनाया?
नहीं साहब,
कमजोर थे हनुमान जी, कमजोर थे। हाँ बिल्कुल कमजोर थे। भाई साहब, वह अध्यात्म जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ, यदि उस तरफ आपका ध्यान चला जाए तो आपका कायाकल्प हो सकता है।
आप यकीन करें, तब आपकी हैसियत बदल जाएगी। आपकी हैसियत वह नहीं रहेगी कि आपको किसी बॉस के नीचे काम करना पड़े,
उससे आपको डरना पड़े।
फिर आप कुछ अजीब किस्म के हो जाएंगे। किस किस्म के हो जाएंगे?
उस अध्यात्मवादी की तरह हो जाएंगे जिस अध्यात्म की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करने जा रहा हूँ। आध्यात्मिक सिद्धि से बदल गए हनुमान मित्रों। जब उनके जीवन में अध्यात्म आ गया तब उनकी स्थिति अजीब सी हो गई।
वे ताकत के जखीरे के रूप में तब्दील हो गए। मिट्टी के जखीरे की क्या कीमत है? एक पैसे की भी कीमत नहीं है। उसके भीतर दो जर्रे भरे पड़े हैं जो अपने आप में कीमती है। उन जर्रों के भीतर जो न्यूक्लियस रहता है वह और भी ज्यादा कीमती है। न्यूक्लियस जब फटता है तब नागासाकी और हिरोशिमा के ढेरों जखीरे को खत्म कर देता है।
आदमी का न्यूक्लियस जिसको हम अध्यात्म कहते हैं,
अगर आदमी को जगाया जा सके, उसे तेज किया जा सके, तो उसे एटॉमिक भट्टियों के रूप में बदला जा सकता है। और अगर फाड़ सकते हों तब आप नागासाकी और हिरोशिमा की तरीके से विस्मार करने वाले बम बना सकते हैं। और अगर आप उसे जगा सकते हों तब आप अणु भट्टियां बना सकते हैं और उससे दुनिया को तबाह कर सकते हैं और जो भी करना चाहें कर सकते हैं। किसकी बात कह रहा हूँ?
मैं आध्यात्मिकता की बात कह रहा हूँ मित्रों।
आपको मालूम है कि नहीं मालूम है कि हनुमान जी का क्या हुआ? नहीं मालूम है तो चलिए मैं बताता हूँ। ताकत के हिसाब से अजीब थे।
पहाड़ को ही उठाकर ले आए। स्थूल शरीर इतना भारी है कि समूचे पहाड़ को ही उठा लाए।
श्री कृष्ण भगवान ने तो गोवर्धन पर्वत को उठाकर अंगुली पर रख लिया था और जहाँ से उठाया था वहीं पर रख दिया था। कहीं ले गए थे?
नहीं ले गए थे,
अभी तक जहाँ का तहाँ रखा हुआ है,
सिर्फ उठा लिया था।
हनुमान जी ने जिस पहाड़ को उठाया था और उठाने के बाद में कहाँ से लेकर कहाँ पहुँच गए और कितनी स्पीड से पहुँचे थे? भरत जी के तीर पर बैठ करके इस तेजी से गए थे कि जिस तेजी से रॉकेट जाते हैं, और वह भी पहाड़ को लेकर के। आप यकीन करें चाहे न करें, वे पहाड़ लेकर के गए थे। किसी का शरीर इतना ताकतवर हो सकता है?
हाँ साहब,
हो सकता है।
मित्रों, आदमी का दूसरा वाला हिस्सा जिसको हम हिम्मत वाला हिस्सा कहते हैं, हिम्मत वाला आदमी समुद्र में छलांग मारते रहे और मुकाबला करते रहे। नेपोलियन ने भी पहाड़ से छलांग मारी थी और आल्पस पहाड़ से कहा था, दोस्त
जगह दीजिए नहीं तो हम पैरों के नीचे कुचल देंगे।
हनुमान जी ने कहा था, दोस्त
हमको निकलने दीजिए नहीं तो आपकी अकल को जिस तरह से टिटहरी ने ठीक कर दिया था हम भी ठीक कर सकते हैं। समुद्र को छलांग मारकर हनुमान जी चले गए और उन लोगों के साथ में मुकाबला किया था। किनके साथ में?
जहां 1,00,000 पूत और 1,25,00,000 नाती अर्थात 2,25,00,000 आदमी रहते थे।
कैसे कैसे वैर करने वाले, विरोध करने वाले थे, और उनमें से एक एक विरोधी ऐसा था, मोटा ताज़ा मजबूत था कि आप तो कल्पना भी नहीं कर सकते। आप तो जरा से विरोधी आदमी को देख करके हैरान हो जाते हैं, लेकिन हनुमान जी के सामने तो ऐसे ऐसे लोगों से वास्ता पड़ा था कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। एक एक आदमी के 10-10 मुंह थे। आपके तो 10 मुंह नहीं है, आप दुश्मन पार्टी के तो नहीं है?
नहीं साहब, ऐसा नहीं है।
आपका जिससे झगड़ा है उसकी मूंछें कितनी लंबी हैं?
मूंछ तो हमारे जैसी ही हैं। हनुमान जी का जिनसे वास्ता पड़ा था उनकी मूंछें बहुत बड़ी थी। 2-2 योजन की दाढ़ी मूंछें थी, 2-2 योजन मूंछें दाढ़ी और योजन 4 नासिका बाढ़ी। मित्रों,
16 मील की तो नाक थी कुंभकर्ण की और 8 मील की उसकी मूंछें थी।
हनुमान जी 5 फुट 6 इंच के थे।
आप जरा कैलकुलेशन कीजिए कि 5 फुट 6 इंच का इंसान 8 मील लंबी मूंछों के जंगल में कहाँ ठहर सकता है। वह तो मूंछों के जंगल में ही घूमता रहेगा, पता ही नहीं चलेगा कि हनुमान जी कहाँ गए।
ऐसे जबरदस्त आदमी थे जिनको हनुमान जी फतह करते चले गए।
अच्छा तो आप हनुमान की प्रशंसा करते हैं। हनुमान की प्रशंसा मैं क्यों करूंगा? क्या मैं हनुमान जी का कोई कमीशन एजेंट हूं? तो फिर हनुमान जी की बात क्यों कर रहे हैं?
अरे भाई, मैं हनुमान जी की बात नहीं कहता, मैं तो अध्यात्म की बात कहता हूँ।
अध्यात्म का वह हिस्सा जिसके बारे में आपको मालूम नहीं है, जिसकी आपको जानकारी नहीं है, जिसकी ओर आपने कभी गौर नहीं किया। यदि आपके पास अध्यात्म की वह शक्ति आ जाए, तब आप हनुमान जी जैसे हो सकते हैं।
आप यकीन मानिए, आप बिल्कुल हो सकते हैं। आध्यात्मिकता है सच्ची ताकत। मित्रों,
प्राचीन काल की परंपराओं में मैं आपको एक से बढ़कर एक बेहतरीन उदाहरण देता हुआ चला जा सकता हूँ, जिससे मालूम पड़े कि आध्यात्मिकता की ताकत क्या है। मैं आपसे सांसारिक जीवन की, भौतिक जीवन की बात कह रहा हूँ, शांति की बात मैं नहीं कह सकता।
हनुमान जी को मुक्ति मिली थी, इससे आपको क्या लेना देना? हनुमान जी को स्वर्ग मिला होगा, आपका स्वर्ग से कुछ वास्ता है क्या?
आप तो ताकत की बात पूछते हैं, दौलत की बात पूछते हैं।
हनुमान जी को दौलत मिली कि नहीं मिली? रामचंद्र जी के कितने मंदिर हैं, जरा हिसाब लगाइए।
मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में रामचंद्र जी के 20,000 मंदिर हों तो बहुत है,
लेकिन हनुमान जी के 1,00,000 मंदिर से कम नहीं हो सकते। रामचंद्र जी का एक भी मंदिर इतना बड़ा नहीं है।
अयोध्या में चले जाइए, जितने हनुमान जी के मंदिर, बालाजी के मंदिर मिलेंगे, वे कितने बड़े बड़े हैं। रामचंद्र जी के कहाँ हैं इतने मंदिर?
रामचंद्र जी के मंदिर में तो भोग कैसा भी लगे, किंतु हनुमान जी को लड्डू का भोग लगता है।
उनके खानदान वाले रोज लड्डू खाते हैं, मजे उड़ाते हैं। रामचंद्र जी के खानदान वालों को लड्डू मिलता है कि नहीं मिलता, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हनुमान जी के खानदान वाले बंदरों को अभी भी गुड़ और भुने हुए गेहूं के लड्डू, बूंदी के लड्डू बनाकर हमारे देहातों में बहुत खिलाते हैं। आपके यहाँ मालूम नहीं कि खिलाते हैं कि नहीं खिलाते, लेकिन हनुमान जी बहुत नफे में हैं।
हाँ साहब,
बहुत नफे में हैं।
आध्यात्मिक संपदा के सामयिक उदाहरण। मित्रों,
मैं क्या कह रहा था?
अध्यात्म की बात कह रहा था, अध्यात्म का वह वाला हिस्सा जो सांसारिक है।
आप में से शायद कोई यह ख्याल करे कि यह तो पुराने जमाने की बातें हैं और पुराने जमाने की बातों से हम पर कोई अच्छा असर नहीं पड़ता। हमको शक है कि पुराने जमाने की बातें सही भी है या नहीं है। अगर किसी ने बात का बतंगड़ बना दिया हो, तब आपकी बात भी सही है। मैंने गलती की जो आपको पुराना उदाहरण दे दिया। अब मैं नया उदाहरण देना चाहता हूँ, जिनके बारे में आपको यह शक न हो कि हमसे जो बातें कही जा रही है, वह गलत कही जा रही है या सही कही जा रही है। आपके पास जिनका सबूत है, अब मैं उन लोगों की बात कहूँगा और किसी की बात नहीं कहूँगा। किनकी बात कहूँ?
चलिए उससे कुछ नीचे आ जाइए, अब मैं भगवान बुद्ध की बात कहूँगा।
आप अब मुझे कहने दीजिए।
मित्रों, भगवान बुद्ध जिस देहात में पैदा हुए थे, वह यूपी के बस्ती जिले का एक हरया नामक गांव था। बुद्ध भगवान वहां पैदा हुए थे।
पहले तो इतिहासकार बहुत ढूंढ रहे थे कि वे कहां पैदा हुए।
कोई कहता कि कपिलवस्तु नेपाल में थी,
कोई कहां कहता, कोई कहां, पता नहीं चल पा रहा था। अब पता चल गया कि यूपी में एक बस्ती जिला है।
बस्ती जिले में एक हरया गांव है। उस गांव में एक छोटे से जागीरदार थे,
जिनके बारे में सभी पुराने शिलालेखों से लेकर के जानकारियां प्राप्त कर ली गई हैं कि उनके पिता वहां रहते थे और वे एक जागीरदार थे।
राजा तो भाई साहब पुराने जमाने में सब थे।
अपने बेटे को भी हम राजा बेटा कहते हैं, उन्हें भी सब कोई राजा साहब कहते थे उस जमाने में।
वे राजा के बेटे थे?
नहीं, राजा के बेटे नहीं थे,
बिल्कुल जागीरदार की छोटी स्थिति के आदमी थे। आध्यात्मिक शक्ति का भौतिक उपलब्धियां।
लेकिन जब बुद्ध के जीवन में अध्यात्म आ गया, तब अध्यात्म की ताकत वाला वह हिस्सा बताता हूँ जिसको आप भौतिक कहते हैं।
दूसरे हिस्से का तो मैं आपसे जिक्र भी नहीं करूँगा, आप यकीन रखिए।
आपके कीमती समय को आध्यात्मिकता के वे हिस्से जिसको शांति कहते हैं, को बताने में मैं बर्बाद नहीं करना चाहता। जिसको मुक्ति कहते हैं, श्रेष्ठ कहते हैं, सिद्धि कहते हैं, उसका तो मैं जिक्र भी नहीं करूँगा आपसे। आपसे तो मैं वही कहूँगा जिसे आप समझते हैं। जो आपने पढ़ा नहीं है, उसके बारे में मैं आपसे क्या कहूँ?
मित्रों, भगवान बुद्ध के भौतिक वाले जीवन से आप क्या समझते हैं?
मैं समझता हूँ कि आप हर चीज की सफलता की निशानी एक मानते होंगे कि धन के अलावा और कुछ नहीं है।
हाँ साहब, आपने बिल्कुल सच कहा, हमारी और आपकी पटरियाँ बिल्कुल एक हो गई। किसी को गुरु का वरदान मिले तो क्या मिलना चाहिए? धन मिलना चाहिए। देवता मिले तो धन चाहिए। आपको कोई मंत्र सिद्ध हो जाए तो धन चाहिए।
आपके जीवन में और तो कुछ नहीं है?
नहीं साहब,
धन मिल जाए तो बाद में एकाध और चीज बता देंगे।
धन तो मुख्य है, ठीक है, आपकी बात को मैं सही मानता हूँ। भगवान बुद्ध का धन आपने देखा नहीं,
एलोरा की गुफाएं आपने नहीं देखी, अजंता की गुफाएं आपने देखी नहीं, सांची के स्तूप आपने नहीं देखे और रंगून का स्वर्ण मंदिर आपने नहीं देखा जिसमें कितना सोना लगा हुआ है, जावा का मंदिर जिसमें 4.5 टन की सोने की मूर्ति रखी हुई है।
यह दुनिया का एकमात्र मंदिर है जहां 4.5 टन सोने की मूर्ति रखी हुई है। अगर आपको भगवान बुद्ध की इमारतें देखनी हो तो अंकोर वाट जाकर देखिए।
कंबोडिया का जो प्राचीन काल का सबसे शानदार खंडहर है, वह इतना शानदार है जो इस जमीन के ऊपर और कहीं नहीं पाया जा सकता। उसको बचाने के लिए राष्ट्रसंघ ने यूनेस्को ने इंतजाम कर दिया है कि 15 दिन में एक हवाई जहाज जाएगा, चाहे वह खाली जाए चाहे भरा हुआ जाए, जिससे जो आदमी उस शानदार खंडहर को देखकर आना चाहते हैं वे देख करके आए। वह करोड़ों अरबों रुपए की दौलत का है।
भगवान बुद्ध की आध्यात्मिक संपदा। मित्रों,
मैं आपसे भगवान बुद्ध के पैसों की बात कह रहा हूँ।
महाराज जी,
अभी और कुछ मत कहना।
इसके अतिरिक्त कुछ और बात कहिए, चमत्कार की बात कहिए।
चमत्कार की बात मैं क्या कहूँ,
आपको तो पैसों का चमत्कार चाहिए ना।
इसलिए मैं पैसे की बात कह रहा हूँ, अभी मैं इमारतों की बात बता रहा था। इमारतों की बात चलने दीजिए। नहीं साहब, यह बताइए कि कितना पैसा था,
उनका अकाउंट है कि नहीं।
बेटे, बही खाता तो है नहीं जो मैं बता दूं कि कितना पैसा था।
एलोरा की गुफाओं में, नालंदा के विश्वविद्यालय में, जिसमें एक साथ 30,000 विद्यार्थी पढ़ते थे, 30,000 विद्यार्थियों के पढ़ने का, खाने का, पीने का, कपड़े का, उस जमाने के हिसाब से हर विद्यालय को खर्च खुद उठाना पड़ता था।
मनियादा थे नहीं, बैंक थी नहीं, चेकबुक थी नहीं, फिर कौन भेजे और कहां से भेजे, सब वहीं से इंतजाम होता था।
भगवान बुद्ध उनके अध्यापकों को एक, विद्यार्थियों का दो, न केवल रहने का वरन खाने पीने एवं पढ़ने का सब इंतजाम करते थे। यह किसका खर्च था? नालंदा विश्वविद्यालय का था। मित्रों, मैं आपको और किसकी बताऊं? तक्षशिला विश्वविद्यालय की बात बताऊं?
वह और भी बड़ा था।
वहां से सारे के सारे एशिया में भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म को फैलाने को जो इंतजाम किया था, हर्षवर्धन ने उसका सारा खर्च उठाया था। अपने समय में हर्षवर्धन ने इतना बड़ा खर्च उठाया था, आप जरा इतिहास में पढ़ लीजिए।
अरब देशों में जहां तेल के कुएं हैं, आप उन जगहों की पुरानी चीजों को देख कर आइए। उनमें से अधिकांश विस्मार हो गई हैं। विस्मार होने के बाद भी आप यह पता चला सकते हैं कि वे सब बौद्ध विहारों से भरे हुए हैं। मक्का मदीना से लेकर के सब जगह, सारा इलाका उन हिस्सों से भरा हुआ है जिनको बौद्ध विहार कहते हैं।
आप चाइना चले जाइए, अब वहां कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आ गई है। इससे पहले तक सारा चाइना बौद्ध था।
इसके लिए कितने प्रचारक भेजने पड़े,
कितना साहित्य भेजना पड़ा और कितना पैसा भेजना पड़ा? यह कौन भेजता था? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन अरब देशों का राजा था। उसने अपनी सारी दौलत बुद्ध भगवान को सौंप दी थी। मित्रों,
अब मैं आपको पैसे की बात कहता हूँ। उसे चाहे आपने कमा लिया हो या पा लिया हो, पर इससे आपको क्या मिला? आप नहीं कमाए और आपकी लॉटरी खुलवा दे तो आपको कोई ऐतराज तो नहीं है?
नहीं साहब, हमें कमाई से कुछ मतलब नहीं है। आप तो हमें पैसा दिलवा दीजिए, चाहे लॉटरी से दिलवा दीजिए।
अच्छा, अगर आपकी सास आपको इतना पैसा दे दे तब भी हमें कोई ऐतराज नहीं है।
हाँ साहब, आपको क्या ऐतराज होना चाहिए? आम्रपाली ने बुद्ध भगवान को कितना पैसा दिया था? आम्रपाली के पास 30-35 करोड़ के करीब की दौलत थी। जब वह बौद्ध भिक्षुणी बनी तो उसने वह सारी दौलत बुद्ध भगवान को दे दिया और भिक्षुणी होकर के सारे सिंगापुर से लेकर के इंडोनेशिया के इलाके में पानी के जहाजों में बैठकर घूमती रही और धर्म प्रचार के बड़े बड़े काम करती रही। अंगुलिमाल का हृदय परिवर्तन। मित्रों, अंगुलिमाल के पास भी लगभग उतना ही पैसा था। अंगुलिमाल के पास भी हमने पैसे का जो हिसाब फैलाया है वह उतना ही था जो उन्होंने बुद्ध भगवान को एकमुश्त दिया था। पैसा?
हाँ पैसा, आप सुनते नहीं है।
ताम्रपाली का पैसा, अंगुलिमाल का पैसा, हर्षवर्धन का पैसा, अशोक का पैसा और न जाने किस किस का पैसा इस कदर टूटता हुआ चला आया।
यह सुनकर शायद आपके मुंह में पानी बहने लगे कि इतना पैसा हमको मिल जाए तो हम भी अध्यात्म की तरफ चल सकते हैं।
मैं इसीलिए आपसे बुद्ध की बाबत कह रहा था।
बुद्ध की उस ताकत की बाबत मैं नहीं कहूंगा कि अंगुलिमाल तलवार घुमाता हुआ जब उनके पास आया और जब यह कहा कि मैं आपका सिर काटूंगा तो उन्होंने कहा कि ले काट हमारा सिर।
इसी तरह जब बन ठन कर आम्रपाली उनके सामने इस इरादे के साथ आई थी कि मैं इसका ब्रह्मचारीपन देखूंगी कि कैसा ब्रह्मचारी है, दोनों आए थे उन्हें अपने अपने ढंग से परास्त करने, लेकिन उन्होंने जब आंख उठाकर देखा तो अंगुलिमाल जमीन पर गिरा उनसे प्रार्थना कर रहा था। उसने कहा, पिताजी,
मैं नरक का कीड़ा आपको हैरान करने आया था।
उन्होंने उसे उठाकर छाती से लगा लिया। बुद्ध भगवान ने अंगुलिमाल से कहा, बच्चे तू डाकू थोड़े ही था,
तू तो संत है,
तूने डाकू का लिबास पहन लिया तो इसको उतार फेंक।
उसने उतार कर फेंक दिया और संत हो गया। किसकी बात कह रहा हूँ? रूहानी ताकत की बात कह रहा हूँ। जिस डाकू ने हजारों लोगों को मार काटकर फेंक दिया था और हजारों लड़कों के पैरों की उंगलियां काट डाली थी, आज वह संत बन गया था।
ताम्रपाली, जिसने हजारों लोगों को पतन के गर्त में गिरा दिया था, आज वह बौद्ध भिक्षुणी बनकर बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लगी थी। यह बुद्ध की रूहानी ताकत थी। भौतिक दृष्टि से भी उनका जीवन शानदार था।
उनके आध्यात्मिक जीवन के बारे में मैं नहीं कह सकता और न ही मुझे कहना चाहिए, क्योंकि आप इसे समझते भी नहीं हैं।
उन्होंने धर्मचक्र प्रवर्तन के माध्यम से लाखों करोड़ों आदमियों के दिलो दिमाग को कैसे बदल दिया था।
समाज की जो प्रथाएं चल रही थीं, उनको किस तरीके से, हवा के तरीके से बदल दिया था। इस तरह की कोई बात आपको बताऊं, इसमें आपकी कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए मैं आपसे ऐसी बातें बताना नहीं चाहता, क्योंकि आप निश्चित रूप से धनी बनना चाहते हैं, मालदार बनना चाहते हैं, समर्थ बनना चाहते हैं।
स्वामी विवेकानंद का जीवंत उदाहरण। मित्रों,
इस संदर्भ में मैं गवाह नंबर 2 प्रस्तुत करना चाहता हूँ।
हाँ साहब, एक और गवाह लाइए। हाँ बेटे, मैं स्वामी विवेकानंद को पेश करता हूँ। विवेकानंद उस आदमी का नाम है जो स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास नौकरी मांगने गए थे। पिताजी का देहांत हो गया,
3 भाई बहन रह गए हैं, माताजी रह गई हैं और हम रह गए हैं। पेट भरने का कोई तरीका नहीं है, आप कहीं नौकरी लगवा दीजिए। रामकृष्ण परमहंस ने नौकरी लगवाने से विवेकानंद को मना कर दिया था और कहा था कि काली से मांग।
जब वे काली के पास गए तो कहने लगे, माँ, मैं तो भक्ति मांगने आया था, शांति वैराग्य मांगने आया था, नौकरी मांगने थोड़े ही आया हूँ। देवी ने कहा, अच्छा ठीक है, हमने तीनों चीजें तुझे दे दी। मैं क्या कह रहा हूँ?
आध्यात्मिकता के बल के बारे में कह रहा हूँ।
स्वामी विवेकानंद आध्यात्मिकता के बल को लेकर गए थे और सारे संसार में तहलका मचा दिया था। आपको मैं और किस्से सुनाऊं? अमेरिका का किस्सा सुनाऊं? शिकागो के किस्से सुनाऊं, जहां वे गए थे और हिंदू संस्कृति के बारे में सारी दुनिया को पुनर्विचार करना पड़ा, हिंदू सभ्यता के बारे में दोबारा विचार करना पड़ा। मित्रों, हमारे यहाँ एक फकीर को क्या सम्मान मिल सकता है?
कलकत्ता की सड़कों पर जब उनका जुलूस निकल रहा था, तो हाईकोर्ट के जज और दूसरे वकीलों ने कहा कि घोड़ों को रथ से खोल दीजिए,
घोड़े वाली बग्घी में ये नहीं चलेंगे, बग्घी को हम खींच कर ले चलेंगे।
विवेकानंद इतने शानदार थे कि मैं क्या कहूँ आपसे।
बेलूर मठ ही नहीं, विवेकानंद के बनाए हुए रामकृष्ण मिशन के संस्थान जितने हिंदुस्तान में हैं, उससे 4-6 गुने विदेशों में हैं।
आप विदेशों में गए नहीं हैं, आप जहाँ भी जाएंगे पुरानी संस्थाओं में यह संस्था काम करती हुई मिलेगी, जिसका नाम है रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन सबसे बड़ी संस्था है। नई तो अनेकों संस्थाएं पैदा हुई हैं, पर पुरानी एक ही है जो सबसे अजूबी है। अच्छा, तो आप विवेकानंद की बात कह रहे हैं?
हाँ, विवेकानंद की बात कहता हूँ। स्वामी विवेकानंद का विलक्षण चमत्कार। विवेकानंद का कोई चमत्कार सुनाए। चमत्कार? हाँ साहब, चमत्कार के बिना तो हमारा मन नहीं भरेगा और चमत्कार के बिना तो जायका नहीं आएगा। चलिए मैं आपको विवेकानंद का चमत्कार भी बता देता हूँ।
कौन सा वाला?
जमशेद जी टाटा लोहे की फैक्ट्री लगाने की इजाजत मांगने के लिए इंग्लैंड गए हुए थे, उनको इजाजत नहीं मिल रही थी।
क्वीन एलिजाबेथ से इजाजत मिली कि आप चाहें तो फैक्ट्री लगा सकते हैं। लोहे की फैक्ट्री की बात हो गई तो वे अब इस तलाश में जुट गए कि लोहा एक जगह मिल जाए, कोयला एक जगह मिल जाए और पानी एक जगह मिल जाए। तीनों चीजें मिले तभी बड़ी फैक्ट्री लग सकती है, छोटी तो कहीं भी लगा सकते हैं।
बड़ी फैक्ट्री के लिए तो तीनों चीजें चाहिए। जमशेद जी एक दिन स्वामी विवेकानंद जी के पास जा पहुंचे।
उन्हें उनसे अपने मन की बात कही कि हिंदुस्तान में लोहा नहीं है,
लोहे की तलाश बताइए।
लोहे पर विदेशियों का आधिपत्य है, कोई आगे बढ़ेगा तो कैसे,
खुशहाल होगा तो कैसे,
देश की दौलत बढ़ेगी तो कैसे। हमें देश में फैक्ट्री लगानी चाहिए, इसके लिए आप कुछ मदद कर सकते हैं। उन्होंने कहा, हमने सुना है कि योगी में ऐसे चमत्कार होते हैं जो सब कुछ जानते हैं, जरूरत होने पर ज्ञान की बात बता सकते हैं। अगर यह बात सही है तो आप कृपा करके हमको यह बता दीजिए कि हिंदुस्तान में ऐसी जगह कहाँ है।
दूसरे दिन विवेकानंद जी ने ध्यान में देखा और सारे हिंदुस्तान का एक्सरे फोटो खींचा।
फोटो खींचने के बाद में उन्हें एक जगह मालूम पड़ी, शरीर के किसी भाग की फोटो खींचने पर जिस तरीके से कैविटी मालूम पड़ती है, जैसे कि लंग्स में कैविटी है। अरे साहब,
यहाँ कैविटी है, यहाँ घाव है।
अच्छा, ठीक उसी तरीके से उन्होंने एक जगह ढूंढ लिया।
वह जगह थी बिहार के सिंहभूमि जिले का एक छोटा सा गांव।
उन दिनों वह वीरान जंगल था और 500 मील की पथरीली और झाड़ियों वाली जगह में फैला हुआ था।
वहाँ कोई आदमी नहीं रहता था। विवेकानंद जी ने कहा कि आप उस इलाके को ले लें, वहाँ पर तीनों चीजें मिल जाएंगी।
जमशेद जी ने कहा कहीं ऐसा न हो कि हम जमीन खरीद लें, पैसा लगा दें और फिर परेशान हो।
उन्होंने कहा आप परेशान नहीं हो सकते,
आपको वहाँ पर तीनों चीजें मिल जाएंगी।
जमशेद जी वहाँ गए, उन्होंने जमीन को ढूंढा, बड़ी मुश्किल से पता लगा, जमीन को खरीद लिया और खरीदने के बाद फैक्ट्री लगाई।
अभी भी वे तीनों चीजें वहाँ पर्याप्त मात्रा में मिलती हैं। यह क्या है? यह वह बात है जिसको आप चमत्कार कहते हैं।
यह भौतिक जीवन का चमत्कार है।
आध्यात्मिकता के चमत्कारों की तो मैं आपसे बात ही नहीं करूँगा। आप तो केवल भौतिक बातें ही सुने, उतनी ही आपकी समझ है। इसलिए मैं भौतिक के अलावा कोई और चमत्कार पेश नहीं करना चाहता। स्वामी विवेकानंद को जमशेद जी ने यह कह रखा था कि आप जो भी काम करना चाहते हो खुले हाथ से करें।
अपने गुरु के नाम पर उन्होंने बेलूर मठ संगमरमर का बनवाया। इसके लिए उन्होंने न चंदा लिया, न रसीदें छपवाए, न मीटिंग्स की, न दान मांगा, न दक्षिणा मांगी, लेकिन हर दिन हर महीने करोड़ों रुपये खर्च किया। उन्होंने सारे हिंदुस्तान में कितनी जल्दी और कितने सारे मठ बना दिए। विवेकानंद की उम्र ही कितनी थी, 36 वर्ष में तो चले ही गए, पर इससे पहले उन्होंने इतने सारे आधार खड़े कर दिए थे।
मैं सोचता हूँ कि सैकड़ों रुपया खर्च किया हो तो मेरे ख्याल से कम नहीं है।
आध्यात्मिकता का चमत्कार। मित्रों,
यह पैसा कहाँ से आया? हम आपसे कह सकते हैं कि जिन लोगों को फायदा हुआ था उन लोगों ने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुबान दी थी, उन लोगों ने उनकी पूरी पूरी मदद की।
आध्यात्मिकता का चमत्कार आपको दिखाई पड़ा, पैसे वाला चमत्कार दिखाई पड़ा, नहीं दिखाई पड़ा। आप तो पैसा वाला चमत्कार देखिए और कुछ मत देखिए। आप पैसे वाला अध्यात्म देखिए, स्वार्थ वाला अध्यात्म समझिए, ताकत वाला अध्यात्म समझिए और बाकी अध्यात्म को छोड़ दीजिए। आप तो तीन अध्यात्म को समझिए जो आपको तीन तरीके से मजबूती दिला सकता है।
पहला जो आपको पैसा दिला सकता है, जो आपको ख्याति दिला सकता है और जो आपका स्वागत करा सकता है।
तो विवेकानंद को करा दिया। हाँ, विवेकानंद को करा दिया। चौथा एक और गवाह पेश करके मैं अपनी बात को खत्म करूंगा या फिर आपको उठ जाने के लिए मजबूर करूंगा कि आपको कहाँ जाना चाहिए।
जिस काम के लिए मैं आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ वह तभी सार्थक होगा जब आप आध्यात्मिकता का सही अर्थ समझ लेंगे और उसे अपनाने के लिए, जीवन का अंग बनाने के लिए तत्पर होंगे।
मित्रों,
मैं एक और गवाह आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। हो सकता है कि इन तीन गवाहों के बारे में आपके दिमाग में शक हो कि यह जो गवाहियाँ पेश की जा रही हैं सही है कि नहीं है। गुरुजी ने विवेकानंद की बात कही है, सही है कि नहीं है? टाटा की बात सही है कि नहीं है, आपको शंका हो सकती है।
बुद्ध के बारे में भी बात पुरानी हो गई, 2500 वर्ष पुरानी।
उसको अपनाने में भी आपको कई तरह की खामियां हो सकती हैं। अब मैं आपको एक ऐसा उदाहरण पेश कर सकता हूँ जिसको चाहे तो किसी मजिस्ट्रेट के सुपुर्द कर सकते हैं, आप चाहें तो CBI के सुपुर्द कर दीजिए और आप चाहें तो तलाश करा लीजिए कि आध्यात्मिकता के रास्ते पर चलने के बाद में आदमी की भौतिक प्रगति होती है कि नहीं होती है।
मित्रों, मैं विशुद्ध भौतिकवाद की बात कह रहा हूँ।
आध्यात्मिक शब्द की तो बात ही नहीं कही है और मैं यह कहना भी नहीं चाहूँगा।
वक्त आएगा तो मैं शायद आपसे कहूँ भी, आप तो अध्यात्म का भौतिक पक्ष समझ लीजिए, बस यही आपके लिए पर्याप्त है। अगर आपने आध्यात्मिक पक्ष सुना तो आप तो महापुरुष हो जाएंगे।
अगर आपने आध्यात्मिक पक्ष सुना तो आप वह बन जाएंगे जो आप बनना पसंद नहीं करेंगे।
आध्यात्मिकता का अध्यात्म पक्ष कभी आपने समझना शुरू किया तो आप भगवान हो जाएंगे, अवतार हो जाएंगे,
जिसको कि शायद आपको बनने का कोई मन नहीं है। ऋषि बनने का आपका कोई मन नहीं है, महापुरुष होने का कोई मन नहीं है। जब मन की नहीं है तो क्यों मैं आपको बताऊं?
आपका मन जिधर है वही आपको बताता हूं। पूज्य गुरुदेव का स्वयं का उदाहरण। महाराज जी, एक और गवाह पेश कीजिए।
हाँ मित्रों, एक गवाह और है और उसके लिए मैं अपने आप को पेश करता हूँ जिससे आप यह तलाश कर ली कि आध्यात्मिकता के रास्ते पर चलने के बाद में आदमी के संसार की जिंदगी फायदेमंद होती है कि नहीं होती है। हमारे जीवन के भी बहुत हिस्से रूहानी है।
उसे आप मत सुनिए और न मैं आपको सुनाऊंगा। आपको मैं अपने जीवन की सांसारिक प्रक्रिया को सुनाना चाहता हूँ।
एक हमारे सांसारिक जीवन का क्रम यह है कि हम 5 आदमियों के बराबर जिंदगी में काम करते रहे हैं। हमारी 71 साल की उम्र है।
70 साल बीत गए, 71वां वर्ष चल रहा है, 71वें वर्ष में अभी तक सन 1980 के समय तक आप हमारे काम को देख लीजिए, हमारे श्रम को, हमारे लेबर को, हमारे टास्क को, सबका हिसाब लगा लीजिए कि हम कोई 5 आदमियों से कम काम नहीं करते।
5 आदमी 8 घंटे पूरी मुस्तैदी से, पूरे दिलो दिमाग से काम करने वाला, 8 घंटे जो काम करता हो, उतना हम अपने इस शरीर से काम लेते हैं। क्यों साहब?